नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा सरकार हाल के पेपर लीक की घटनाओं की जांच करने और दोषियों को दंडित करने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति ने कहा आगामी आम बजट सरकार की भावी नीतियों और लक्ष्य पर आधारित होगा। अमरीकी कांग्रेस के निचले सदन ने पाकिस्तान में हुए आम चुनाव की स्वतंत्र जांच के लिए प्रस्ताव पारित किया। मौसम विभाग का उत्तर भारत के कई हिस्सों में वर्षा का पूर्वानुमान। दिल्ली में भारी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत। और क्रिकेट में T20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। दोपहर समाचार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और दोषियों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा संबंधित निकायों, उनके कामकाज और परीक्षा प्रक्रिया के सभी पहलुओं में बड़े सुधारों की दिशा में काम कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हो या सरकारी भर्ती की प्रक्रिया, सभी में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी की आवश्यकता है।
हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है।
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान दर्ज कर देश के दुश्मनों को करारा जवाब दिया है।
कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे। बीते चार दशकों में कश्मीर में हमने बंद और हड़ताल के बीच वो मतदान का दौर ही देखा था। भारत के दुश्मन इसको वैश्विक मंचों पर जम्मू कश्मीर की राय के रूप में दुष्प्रचारित करते रहे, लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने देश और दुनिया में ऐसे हार ताकत को करारा जवाब दिया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि नई सरकार आगामी संसद सत्र में अपना पहला आम बजट पेश करने जा रही है। ये उसकी दूरगामी नीतियों और भविष्यवादी दृष्टिकोण का एक प्रभावी दस्तावेज होगा और सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। अर्थव्यवस्था की मजबूती पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि केंद्र विनिर्माण, सेवाओं और कृषि को समान महत्व दे रहा है। उन्होंने कहा कि देश सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर पर्यटन और स्वास्थ्य हर क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभर रहा है। इससे बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। कृषि क्षेत्र को दी गई प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण क्षमता बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने भारतीय शहरों को दुनिया में सर्वोत्तम रहने की जगह बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। अपने लगभग एक घंटे के संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार की पहल पर भी प्रकाश डाला और कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में 3,80,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि असम में 27,000 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए काम कर रहा है और पिछले 10 वर्षों में कई समस्याओं का समाधान किया गया है।
मेरी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 10 वर्षों में आवंटन में 4 गुना से अधिक की वृद्धि की है। सरकार इस क्षेत्र को एक्टिव पॉलिसी के तहत स्ट्रेटेजिक गेटवेज बनाने के लिए काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में हर तरह की कनेक्टिविटी का बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार, हर क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है।
हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कुछ विपक्षी सांसदों ने नीट परीक्षा, मणिपुर हिंसा और अन्य मुद्दों पर शोर शराबा किया। बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के 6 नवनिर्वाचित सांसदों ने आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। इन नए सांसदों को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शपथ दिलाई। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, झारखंड मुक्ति मोर्चा के डॉ सरफराज अहमद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप कुमार वर्मा, बंशीलाल गुर्जर, माया नारोलिया और बाल योगी उमेश नाथ ने सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन की एक प्रति आज लोकसभा में प्रस्तुत की गई। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद दोपहर में सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अभिभाषण की प्रति सदन में प्रस्तुत की गई। अध्यक्ष ओम बिरला ने भी घोषणा की कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को निचले सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी गई है। बाद में सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति प्रस्तुत की गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने घोषणा की कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। बाद में सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने आज संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन की आलोचना की। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर ने कहा कि संबोधन में निर्धनता, महंगाई और बेरोजगारी सहित वास्तविक मुद्दों की अनदेखी करके सिर्फ सरकार की उपलब्धियों को उजागर किया गया है। कांग्रेस के अन्य नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि संबोधन में कुछ नया नहीं था। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने की बात करती है, लेकिन व्यापक स्तर पर बेरोजगारी है, किसान तकलीफ में हैं, जबकि लाभ कुछ चुनिंदा लोगों को मिल रहे हैं। उन्होंने अग्निवीर योजना के कार्यान्वयन पर सरकार पर प्रश्न भी उठाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीकी कांग्रेस के निचले सदन ने पाकिस्तान में हुए आम चुनाव की स्वतंत्र जांच का प्रस्ताव पारित किया है। पाकिस्तान में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के प्रति समर्थन देने वाले प्रस्ताव में 2024 के आम चुनाव में किसी प्रकार की अनियमितताओं की दावेदारी में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के महत्व पर बल दिया गया है। इस बीच प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इसकी आलोचना की। ये प्रस्ताव 85% सदन के सदस्यों की भागीदारी से पारित किया गया। 98% सदस्यों ने इसके समर्थन में मतदान किया। पाकिस्तान में इस वर्ष 8 फरवरी को आम चुनाव कराया गया था। इस चुनाव में अनियमितताओं के आरोप लगे, इंटरनेट बंद होने की घटनाएं हुई, मतदान में धांधली देखी गई और देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसक घटनाओं की खबरें मिलीं। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार असम, मेघालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और बिहार के क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में रविवार तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। विभाग ने कहा है कि कल से 30 जून तक झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में रूक रूक कर तेज बारिश होने की संभावना है। इस बीच दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह मध्यम से तेज बारिश हुई। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
भारतीय टीम अपने आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया पर 24 रन से जीत दर्ज करने के बाद सुपर 8 राउंड में।
मॉनसून से पहले की बारिश से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली है। बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। दिल्ली के सरिता विहार, मुनिरका, लक्ष्मीनगर, यमुना विहार समेत नोएडा और गाजियाबाद के इलाकों में भी भारी बारिश हुई है। बारिश के कारण विभिन्न इलाकों में जलजमाव भी देखा गया, जिससे कुछ हिस्सों में यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अब तक 5.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल चंदनवाड़ी आधार शिविर का दौरा कर श्री अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अमरनाथ यात्रा शनिवार से शुरू हो रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच रात 8 बजे से शुरू होगा।
भारतीय टीम अपने आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया पर 24 रन से जीत दर्ज करने के बाद सुपर 8 राउंड में अंक तालिका में शीर्ष पर रही। दूसरी ओर इंग्लैंड सुपर 8 राउंड में दूसरे नंबर पर रही। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है, जो फाइनल की राह तय करेगा। मैच पर बारिश की वजह से असर पड़ सकता है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसकी सलामी जोड़ी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मैच में रोहित शर्मा की शानदार पारी के अलावा विराट कोहली का बल्ला नहीं चल पाया। कोहली पर इस करो या मरो वाले मैच में रन बनाने का दबाव है। भारतीय गेंदबाजों ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव की तिकड़ी मजबूत दिखी। इंग्लैंड की टीम भी मजबूत है, जो सेमीफाइनल में कड़ी टक्कर देगी। चिराग झा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल।
इससे पहले टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में आज सुबह दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर पहली बार फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। भारत के प्रियांशु राजावत और मालविका बंसोड़ यूएस ओपन बैडमिंटन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। टेक्सस में कल रात राजावत ने पुरुष एकल के पहले दौर में चेक गणराज्य के जान लाउट को 21-16, 21-16 से हराया। आज राजावत का सामना ताइवान के हुआंग यू काई से होगा। महिला एकल के पहले दौर में मालविका ने एस्टोनिया के क्रिस्टन कूबा को 21-14, 21-15 से पराजित किया। प्री क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला चेक गणराज्य की तेरेजा स्वाबिकोवा से होगा। पुरुष युगल में के साई प्रतीक और कृष्णा प्रसाद की जोड़ी ने आयरलैंड के स्कॉट गिल्डिया और पॉल रेनॉल्ड्स की जोड़ी को 21-14, 21-12 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब भारतीय जोड़ी का अमरीका के पीटर स्मिथ और चेन जी यी से होगा। महिला युगल में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात चीनी ताइपे की पी हेसिंग और ई हंग से भिड़ेंगे। सुपर वेट शतरंज क्लासिक में डी गुकेश ने कल रोमानिया में जीत के साथ शुरुआत की। उन्होंने पहले दौर में बोगदान डैनियल डी को पराजित किया। आर प्रज्ञानानंद और उज़्बेक ग्रैंडमास्टर नोदिरबेक अब्दुल सत्तारोफ के बीच मैच बराबरी पर रहा। दुबई के सबसे पुराने कला संस्थान दुबई आर्ट सेंटर में इन दिनों भारतीय लोक और जनजातीय कला की प्रदर्शनी चल रही है। हुनर नाम से आयोजित इस प्रदर्शनी में भारत के विभिन्न लोक कलाओं और जनजातीय कला विधाओं की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा सरकार हाल के पेपर लीक की घटनाओं की जांच करने और दोषियों को दंडित करने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति ने कहा आगामी आम बजट सरकार की भावी नीतियों और लक्ष्य पर आधारित होगा। अमरीकी कांग्रेस के निचले सदन ने पाकिस्तान में हुए आम चुनाव की स्वतंत्र जांच के लिए प्रस्ताव पारित किया और मौसम विभाग का उत्तर भारत के कई हिस्सों में वर्षा का पूर्वानुमान। दिल्ली में भारी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।